78.
Om Vishranam Paramam Mahesham, Tam Devatanam Paramam Chadevatam, Patim Patinam Paramam Parastat, Vidam Devam Bhumneshu Yudhyam. प्रातःकाल के प्रवचन पर शंका उठाई गई है कि बहुत से आचार्य आत्मा के विषय की बात हृदय प्रदेश में करते हैं यहाँ, और आप ब्रह्मरंध्र में आत्म दर्शन की बात कर रहे थे। सब आचार्य परमात्मा की और जीवात्मा की चेतनता समान मानते हैं, चेतनता में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मरंध्र में यदि परमात्मा को सर्वव्यापक चेतन मानकर उसका अनुसंधान किया जाए, उसकी खोज की जाए बुद्धि के प्रदेश में, तो बुद्धि परमात्मा के दर्शन करा देगी, समझा देगी, दिखा देगी, बतला देगी, और उसके वहां उस चेतन सत्ता के ज्ञान होने पर यदि तुम हृदय प्रदेश में ही अणु आत्मा को मानते हो तो उस सर्वव्यापक चेतन सत्ता के साक्षात्कार होने पर अणु चेतन सत्ता का भी उसी प्रकार ज्ञान हो सकता है, क्योंकि महान और अणु, तो महान को जैसे ही पर्वत दूर से नजर आ रहा है, और पर्वत पर कोई अगर छोटी सी कोई चीज चिड़िया बैठी हो तो वो नजर नहीं आएगी, तो इसलिए परमात्मा जो है वो महान है, सारे शरीर में व्यापक है, तो व्यापक होने से अगर हम उसका साक्षात्कार मस्तिष्क में बुद्धि के मंडल में करते हैं तो उसके समान ही हृदय में भी चेतन सत्ता अणु आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े महान चेतन को देखकर अणु चेतन का भी पता लग सकता है। और परमात्मा का व्याप्य व्यापक भाव संबंध बनेगा, क्योंकि बुद्धि स्थूल है, परमात्मा सूक्ष्म है, तो बुद्धि में परमात्मा की व्याप्ति बनेगी। जब हम जीवात्मा को अणु मानते हैं, परमाणु की तरह सूक्ष्म मानते हैं, तो वहां उसका व्याप्य व्यापक भाव संबंध नहीं बनेगा, संयोग संबंध बनेगा। और जैसे अनंत अणु का समुदाय चित्त है, अगर करोड़ों परमाणुओं को इकट्ठा कर दिया जाए और उनकी एक तहसी बन जाए, तो इस प्रकार का उन करोड़ों परमाणुओं के समुदाय में प्रेत सी में एक अणुचेतन जीवात्मा ठहरेगा, तो वहां भी अगर हम चित्त के प्रदेश में उस अणु आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो वो वहां विजातीय है, उसकी जाति कानूनी है, क्योंकि चित्त की जाति के अनेक अणु मिलकर के एक समुदाय बना हुआ है। वास्तविक में चित्त भी क्या चीज है? ये जो हमारे संस्कार हैं, जो हम कर्म करते हैं, इन कर्मों का बीज रूप सूक्ष्म संस्कार बनते हैं, तो उन संस्कारों का समुदाय मजमुआ ही एक चित्त होता है। और वास्तविक में ये जो प्रकृति है ये भी अनंत असंख्य संस्कारों का ही समुदाय है, वो ये संस्कार ही सूक्ष्मी भाव को प्राप्त होकर के चित्त के रूप में ठहर जाते हैं या प्रकृति के रूप में ठहर जाते हैं। जैसे एक पीपल का बड़ा वृक्ष होता है, उसका छोटा सा दाना होता है, तो सारा पीपल उस छोटे से राई के दाने के समान में ठहर जाता है। इसी प्रकार इस संस्कार के अंदर सारा कर्म ठहर जाता है, तो क्योंकि कर्म अनेक हैं, संस्कार अनेक हैं, तो अनेक कर्मों का संस्कारों का समुदाय ही चित्त है। और ये प्रकृति भी सारे जगत का उपादान कारण होने से ये भी अंत में एक प्रकार ये जो संस्कार होते हैं ये परिणित होते हुए सूक्ष्म भाव को प्राप्त होते हुए प्रकृति के रूप में ही जा ठहरते हैं। और फिर जब प्रकृति परिणाम भाव को प्राप्त होती है, विकास भाव को प्राप्त होती है, तो वो सारे क्या नाम संस्कार स्थूल रूप में आन करके ये ब्रह्मांड बन जाता है। ये मस्तिष्क में जो सर्वव्यापक चेतन सत्ता परमात्मा की है, अगर बुद्धि के द्वारा हम उसको जानना चाहते हैं, मैं तो इसको आत्मा का रूप दिया था, तो आत्मा शब्द से परमात्मा का भी बहुत जगह ग्रहण होता है, क्योंकि जब दोनों जीवात्मा को लेते हैं, ईश्वर को लेते हैं, तो उसके साथ में परम शब्द लगा दिया जाता है, इसलिए वो परमात्मा बन जाता है। आत्मा उसके साथ भी शब्द आता है, तो आत्म शब्द से दोनों का ग्रहण हो जाता है। यदि आप अणु जीवात्मा को मानते हैं, तो उसमें एक और संदेशंका पैदा हो जाती है कि वो अणु जो चेतन सत्ता आत्मा जीवात्मा अणु है, वो सावैव है या निरवैव है, उसके विभाग हो सकते हैं या नहीं। अगर विभाग नहीं हो सकते, वो निरवैव है, तब उसमें परमात्मा की व्याप्ति नहीं बनेगी। और निरवैव अनेक नहीं हो सकते, निरअवैव एक ही होगा। अनेक परमाणुओं को अगर हम निरवैव कहें, उनका विभाग ना हो सके, तो अनेक चीज निरवैव नहीं होगी। निरअवैव जिसका विभाग ना हो, वो एक ही चीज हो सकती है। सो वो ऐसा परमात्मा ही है जिसका कोई विभाग नहीं हो सकता, और सारे जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं सबका विभाग हो सकता है। तो इसलिए जीवात्मा की ऐसी कोई निरवैव स्वतंत्र सत्ता बनती नहीं है। हाँ, इन आचार्यों ने, स्वामी दयानंद ने, रामानुजादी आचार्यों ने और दूसरे आचार्यों ने, ये लोग जीवात्मा को सावैव सा मानते हैं, तो ये जीवात्मा में परमात्मा की व्याप्ति मानते हैं। तो फिर वहां भी ये संदेह और शंका हो जाती है कि जीवात्मा में अगर देश विशेष हैं, विभाग होते हैं, तो हमारे चित्त के भी देश विशेष और विभाग होते हैं। जैसे चित्त उत्पन्न होने वाला है, ऐसे जीवात्मा भी उत्पन्न होने वाला बन जाएगा, और फिर उसका कोई उपादान कारण चेतन ही मानना पड़ेगा। तो ये शंका फिर हो जाती है सावैव पर। तो इसलिए सावैव तो जीवात्मा सिद्ध ही नहीं होता, और निरवैव भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निरवैव अनंत नहीं हो सकते, अनेक नहीं हो सकते, निरवैव एक ही होगा। तो ये दो प्रकार की ऐसी शंकाएं हैं कि जिनका हमें समाधान नहीं मिलता जीवात्मा को अनुमानने पर। ये मैं जो कह रहा था प्रातःकाल कि चेतन सत्ता को, आत्मा को आप ब्रह्मरंध्र में, बुद्धि के मंडल में देखें, दोनों की व्याप्ति देखें। चित्त, बुद्धि और मन के बीच के अंदर कोई एक ऐसी सत्ता की खोज करो, ऐसी चीज को देखो जिसमें कोई विकार ना प्रतीत हो, परिणाम ना प्रतीत हो, एक ही अवस्था में सदा देखने में आए। चाहे उसका तुम कोई रूप कल्पना कर लो, कोई कुछ ही उसको समझ लो, कुछ उसको कह दो, ऐसी कोई इन दोनों से, मन और बुद्धि से भिन्न कोई ऐसी सत्ता तुम्हें सामने आकाश की तरह या एक रूप, इस आकाश को पुल को हम रोज देखते हैं, यहाँ इस कमरे में ऐसा ही नजर आता है, इसमें हम कोई तब्दीली परिवर्तन नहीं देखते, तो ऐसी चेतन सत्ता आकाश की तरह तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर बुद्धि के मंडल में, उस बुद्धि से भिन्न पदार्थ तुम्हें प्रतीत होना चाहिए जिसमें कोई विकार परिणाम तब्दीली देखने में ना आए। जब देखो तद एक ही रूप, चाहे तुम उसको प्रकाश के रूप में देखो, चाहे प्राण के रूप में देखो, चाहे जिसके रूप में देखो, चाहे आकाश के रूप में देखो। जब हम ध्यान आदि करते हैं तो वहां इस प्रकार के पदार्थ वर्तमान नहीं है, क्योंकि जैसे कि मस्तिष्क में है, विचार शक्ति आपकी मस्तिष्क में पैदा होती है, इंद्रियें भी तुम्हारी मस्तिष्क में वर्तमान रहती हैं, और हर वक्त इनके साथ तुम्हारा व्यवहार रहता है, मन और बुद्धि का, इंद्रियों के साथ में। तो चिंतन मनन आदि की बातें तुम्हारे मस्तिष्क में ही होती है, तो इसलिए आपको हृदय की बजाय इस मस्तिष्क के द्वारा ही परमात्मा की या आत्मा की खोज करनी चाहिए। अगर आप आत्मा को अणु मानते हैं तो अभी उस अणु को रहने दो। सर्वव्यापक जो चेतन सत्ता परमात्मा की तुम्हारे बुद्धि में भी वर्तमान है, उसको देखने की समझने की अभ्यास में कोशिश करो। एक ऐसा स्थान है शीशे की तरह, दर्पण की तरह। जब परमात्मा का एक बार साक्षात्कार हो जाएगा, चाहे हृदय में हो जाए चाहे ब्रह्मलिंग में, फिर आपकी इतनी योग्यता हो जाएगी, अगर इस उंगली में भी तुम भगवान को देखना चाहोगे तो इसके अंदर भी उसकी व्याप्ति ऐसे ही तुम्हें प्रतीत होगी जैसे हृदय में होती है। पर एक बार समझ में आ जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए, तो उसके देखने के दो ही स्थान है। एक ये बुद्धि का सेंटर है और हृदय में चित्त का सेंटर है। अगर इन किसी में भी आपके दर्शन का विषय बन जाता है, ज्ञान का विषय बन जाता है, फिर आप इस पर्वत में भी देख सकते हो, मकान में भी देख सकते हो। जैसे इस आकाश की व्याप्ति मकान में भी नजर आती है, हवा में भी नजर आती है, जल में भी, अग्नि में भी नजर आती है, इसी प्रकार उस परमात्मा की व्याप्ति सर्वत्र तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगेगी। आकाशमंडल यहाँ वर्तमान है, आपको प्रत्यक्ष ये दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप से इसकी प्रतीति हो रही है। तो इसके समान ही इसकी जाति वाला तो नहीं, भिन्न जाति वाला, क्योंकि वो चेतन है, ये जड़ है। तो इन दोनों का भी आपस में व्याप्य व्यापक भाव संबंध है। यद खम तद ब्रह्म, जैसे ये आकाश है ऐसे ब्रह्म भी व्यापक है। तो इस आकाश को तुम सामने रख करके, लक्ष्य रख करके परमात्मा को समझने की, जानने की कोशिश करो। जैसे ये आकाश है, जब हम देखते हैं ये इसी रूप में हमें नजर आता है, आंखें भी बतलाती हैं, हाथ भी बतलाता है, शरीर भी बतलाता है, क्योंकि गमना गमन रूप धर्म इसमें होते हैं। तो इसी प्रकार ऐसी एक और चेतन सत्ता है आकाश के समान, जो सारे पदार्थों के गर्भ में ओतप्रोत होकर के ठहरी है और अंतर्यामी रूप से सबको गतिशील किए हुए हैं। वो है चेतन सत्ता, उसको कोई परमात्मा कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं। परमात्मा को देखते हुए एक दृष्टि तो आपकी ध्यान की उस बुद्धि के मंडल में रहे जहां की परमात्मा वर्तमान है, और दूसरी दृष्टि उपमा के रूप में बाह्य आकाश मंडल में रहे कि जैसे मैंने आकाश को खड़ा हुआ एक रूप से सदा देखता रहा, ऐसे ये चेतन सत्ता भी बुद्धि के मंडल में आकाश की तरह निर्विकार सी होकर के खड़ी हुई है, ठहरी हुई है। जैसे ये आकाश है ऐसे ही वहां ब्रह्म भी है। आकाश में हवा भी चलती है, अग्नि भी चलती है, पृथ्वी भी चलती है, जल भी चलते और हम भी चलते हैं, सारा ब्रह्मांड चलता है। ऐसे ही उस चेतन सत्ता के अंदर ये सारा विश्व वर्तमान है, जो अंतर्यामी रूप से सबके अंदर गति का हेतु, क्रिया का हेतु बना हुआ है। उसी को आप अपने मस्तिष्क में आज अभ्यास काल में देखने का यत्न करें।